बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे मिस्र के बहरान के तनाजुर में। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, मिस्र में इनकलाब आया। अमरीका, सहूनी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इख़वानुल मुस्लिमीन के हिमायत याफ्ता रहनुमा मोहम्मद मुरसी इंतखाबात में कामयाब हुए और उनकी सदारत में हुकूमत कायम हुई। लेकिन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इसके क़याम से पहले ही साजिशें शुरू हो चुकी थीं, जो हुकूमत कायम होने के बाद तेज़ हो गई और सरंजाम एक फ़ौजी इकदाम में उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई और फ़ौज ने अबूरी हुकूमत कायम कर दी। अब इस अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती में नए आइन का मुसवदा तैयार किया गया है, जिसको अबूरी सदर की खिदमत में पेश कर दिया गया है। आइन के नए मुसवदे की तैयारी के ऐलान के बाद मिस्र एक बार फिर अवामी इज्तिमात और मुजाहरों के मैदान में तब्दील हो गया। आज के प्रोग्राम में हम आइन के नए मुसवदे का जायज़ा लेंगे, इसके अहदाफ पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही इख़वानुल मुस्लिमीन की मौजूदा पोजीशन भी ज़ेर बहस आएगी और साथ ही हम इस बात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि मिस्र के अवाम का इनकलाब किस रास्ते पर जा रहा है और इसका मुस्तकबिल क्या है। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
मिस्र में हालात बदस्तूर कशीदा हैं और मुर्सी के हामियों के मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है, जबकि फौज और उसकी हिमायत से इख्तदार संभालने वाली हुकूमत हालात को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन वहां हालात संभल नहीं रहे हैं और अब तो मगरिब भी मिस्र के हालात पर तशवीश जाहिर करने लगा है। इसी सिलसिले में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह कैथरीन एश्टन ने मिस्र के दौरे में इस मुल्क के बहरानी हालात पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने मिस्र में तशद्दुद और गिरफ्तारियों को इस मुल्क में जमहूरियत की राह में असल रुकावट करार दिया है। कैथरीन एश्टन ने ऐसे हालात में मिस्र का दौरा किया है कि जब इस मुल्क को नए आइन के मामले पर सियासी और सामाजिक तौर पर नई किस्म की कशीदगी का सामना है। मिस्र और खास तौर पर कायरा में हर तरफ फौज का पहरा और फौजी टैंक बख्तर बंद गाड़ियाँ मिस्री आवाम के लिए रोज ही नजर आने वाले मनाजिर हैं। मिस्र के मौजूदा हालात और इख्तदार से फौज की दिलचस्पी के पेश नज़र बहुत से तजिया निगारों का ख्याल है कि मिस्र के मौजूदा वजीर दिफा अब्दुल फत्ता असीसी ने मुर्सी के खिलाफ बगावत में अहम किरदार अदा किया है और यही वजह है कि मिस्र के आइन पर फौजियों के गहरे असरात का खदशा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था। इख़वानुल मुस्लिमीन समेत मिस्र की तमाम दीगर इस्लाम पसंद जमातों का ख्याल है कि नया आइन फौजियों के मफादात का तहफ्फुज़ करता है। ये ख्याल नए आइन की उस शिख से पैदा हुआ है जिसमें वजीर दिफा को माजूल करने का हक सद के बजाय मुसल्ला अफवाज की आला कौंसिल को दे दिया गया है, जिससे ये वाजह होता है कि मिस्र में फौज इख्तदार पर काबिज रहना चाहती है और आइन की यही शिख मौजूदा हालात में मिस्र में इख्तलाफात का बाइस बनी हुई है, जबकि फौज मुजाहरीन पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर उनके खिलाफ तशद्दुद का जवाज़ फराहम करने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ मगरिब और ख़ास तौर पर अमेरिका की खामोशी के दरमियान हो रहा है। वैसे मिस्र में जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी हद तक मुर्सी के खिलाफ फौज की जानिब से की जाने वाली बगावत का नतीजा है और इस बगावत की मजम्मत तक करना अमेरिका ने गवारा नहीं की। यही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों को बंदूक की नोक पर जमहूरियत का सबक सिखाने वाले अमेरिका ने मिस्री फौज के साथ ताउन भी नहीं रोका, जो इस बात का सबूत है कि मिस्र में फौजी बगावत को अमेरिका की हिमायत हासिल है। मौजूदा हालात में इख़वानुल मुस्लिमीन के लिए इंतहाई मुश्किलात और मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उसे कई सिमतों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के अंदर फौज की जानिब से दबाव के साथ ही उसे कुछ अरब मुल्कों की भी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और इस्लाम पसंद जमातों की फहरिस्त में शुमार होने की वजह से मगरिब तो उसे नापसंद करता ही है। लेकिन माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इख़वानुल मुस्लिमीन ने हालांकि कुछ गलतियां की हैं, लेकिन उसे मिस्र की सियासत से हटाना इतना आसान नहीं है जितना मिस्री फौज और उसके हामियों को महसूस होता है। इन हालात में मिस्र में बेहतरी के फिलहाल आसार नजर नहीं आते।
ناظرین، مصر کے موجودہ حالات سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. آج کے پروگرام میں ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے مرکزی رہنما قاسم رسول الیاس. لندن اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی گئی ہے لندن میں مقیم بر صغیر کے ایک ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار شبیر رضوی کو، اور اسکائپ کے ذریعے آج کی بحث میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار عمر ریاض عباسی کو. جی، تو چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار شبیر رضوی صاحب موجود ہیں. رضوی صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی رضوی صاحب، مصر میں عمرو موسیٰ کی صدارت میں 50 رکنی کمیٹی نے آئین کا نیا مسودہ تیار کر کے عبوری صدر عدلی منصور کو پیش کر دیا ہے. ابھی اس مسودے پر ریفرنڈم ہونا باقی ہے. مصر کے نئے آئین کے حوالے سے مصر میں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. آئین کے نئے مسودے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک نیا کانسٹیٹیوشن اور نئے آئین کا تعلق ہے، ایجپٹ نے پورا پاور جو ہے ملٹری کو دے دیا ہے اس کانسٹیٹیوشن میں. جیسے آپ نے فرمایا کہ رائٹس اور ڈیمونسٹریشنز اور اس کے خلاف مجمع جمع ہونے لگ گیا ہے. یعنی کہ گزشتہ دنوں میں تحریر اسکوائر پر لوگ جمع ہو رہے تھے، وہاں پر جو ہے ملٹری اور پولیس نے ان ڈیمونسٹریٹرس کو جو ہے وہاں سے یعنی کہ خالی کیا تحریر اسکوائر کو. اور یاد رہنا چاہیے کہ جب سے یہ ملٹری حکومت آئی ہے ایجپٹ میں اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی کہ مرسی صاحب کی حکومت کو جو ہٹایا انہوں نے، تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں. اس دوران تقریباً 1000 لوگ مارے گئے ہیں، نہ صرف کائرو میں مگر دوسرے شہروں میں، الیگزانڈریا میں، مزید بڑے شہر جو ایجپٹ مصر کے ہیں وہاں پر کسی نہ طرح سے قتل عام کیا گیا ہے. تو یہ ملٹری گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن آئین جو بھی بناتی ہے پبلک اس سے راضی نہیں ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن کا ریفرینڈم جب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ریفرینڈم میں جیسے مبارک کے زمانے میں ہوتا تھا کہ 99% 98% جو ہے انہیں ووٹ کریں گے اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے. مگر یقینی طور پر یہ کانسٹیٹیوشن، یہ آئین پبلک کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، یہی دکھائی دیتا ہے اس وقت. جب تک یعنی کہ اخوان المسلمین کے اراکین، ان کے لیڈرز اس وقت جو ہے زندان میں ہیں اور ان کی جو ہے کوئی ٹرائل نہیں ہو رہی ہے، اور یعنی کہ ورلڈ ہیومن رائٹس کی باڈیز نے یہ واضح طور پر پیش کیا ہے کہ ملٹری حکومت جو ہے ہیومن رائٹس کی یعنی کہ رائٹس کو پامال کر رہی ہے، اور کسی طرح سے جو ہے ان کا جو پاور ہے اس وقت ملٹری حکومت کا ایجپٹ میں لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. کسی بھی قانونی طور پر وہ جو ہے جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ناجائز طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا یعنی کہ کلیئر سچویشن یہ دکھائی دیتی ہے کہ آئین بنا لیں، کچھ یعنی کہ گورنمنٹ کو وہ پیش کریں، سویلین گورنمنٹ کو وہ پیش کریں، مگر اس کا پاور جو ہے ملٹری کے ہاتھ میں رہے گا. اور جب تک ملٹری کے ہاتھ میں رہتا ہے، میرے خیال میں مصر کی عوام یہ پوزیشن، یہ سچویشن کو، یہ حالات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے.
شبیر رضوی صاحب، جہاں تک حکومت کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کا سوال ہے، تو حسنی مبارک کی حکومت بھی، اس کی بھی کوئی زیادہ قانونی حیثیت تو نہیں تھی، وہ تو زبردستی مسلط تھی عوام پہ. موجودہ جو حکمراں ہیں ان میں اور سابق ڈکٹیٹر میں فرق کیا ہے؟
دیکھیے، ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. फ़र्क जो है यानी कि वो इस तरह से पेश करना चाह रहे हैं कि नया आइन बनाएंगे, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पेश करेंगे, जिससे वो यानी कि लिबास पहनाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का लिबास पहनाना चाहते हैं, रेफरेंडम का लिबास पहनाना चाहते हैं कि वो पब्लिक से की ख्वाहिश और उनकी रजामंदी चाहते हैं। मगर यकीनी तौर पर डिक्टेटरशिप जहाँ पर भी होती है और मिलिट्री हुकूमत चाहे वो यानी कि जहाँ तक इस वक्त अरब ममालिक में जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग की बिना पर जो चेंजेस हुए, जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप थी, चाहे वो ट्यूनीशिया में हो, चाहे वो इजिप्ट में हो, यमन में हो या लिबिया में गद्दाफी की हुकूमत हो, डिक्टेटरशिप जो है पावर उनके हाथों में हाथ में रखना चाहती है और किसी पब्लिक को अवाम का कुछ इंटरफियरेंस नहीं चाहती है, और फिर जुल्म इस शिद्दत से करती है कि अवाम जो है किसी तरह डर के खामोश रहे। मुबारक साहब ने भी 30 साल तक जो हुकूमत की, इलेक्शंस होते रहते थे, बिल्कुल कहा जा सकता है कि इलेक्शन होते थे वहाँ पर, मगर इलेक्शन में मुबारक भी जो है 98-99% वोट से जीतते थे हमेशा। वहाँ पर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें फुल पावर जो है मुबारक को दिया जाता था, जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, जो भी पार्लियामेंटेरियंस होते थे, जो इलेक्टेड होते थे, उनका कोई पावर नहीं होता था। तो डिक्टेटरशिप में कोई फ़र्क नहीं होता है, चाहे वो इस वक्त इजिप्ट में यानी कि पेश की जा रही हो या किसी दूसरे मुल्क में गुज़िश्ता बरसों में हो रही थी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, स्काइप के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तज़िया निगार उमर रियाज अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी। अब्बासी साहब, इस वक्त मिस्र में आइन के नए मुसविदे को लेकर हंगामे हो रहे हैं। आइन का जो नया मुसविदा है, ये अम्र मूसा की सदारत में एक 50 रुकनी कमेटी ने तैयार किया है। अम्र मूसा साहब का इनकलाब मिस्र में किरदार क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इजिप्ट की सिचुएशन को अगर आप देखें तो तीन चार हवालों से बड़ी इम्पोर्टेंट है
जी।
इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट की हैसियत से अगर देखूं मैं, तो उसमें इसका रिलेशन जो बनता है इसराइल के साथ, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इजिप्ट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा जो अमेरिकन और सऊदीज इन्वॉल्वमेंट है इजिप्ट रेवोल्यूशन के अंदर, और उस रेवोल्यूशन को टेक ओवर करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको देखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। सेकंड वाली आपने अमर मूसा की बात की, नए कानूनी मुसद्दे की बात की। इजिप्ट का अगर शुरू से आप लॉ देखें तो ये एक ऐसी सरजमीन होती थी कि जहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स की हमेशा से आवाज उठती रही है। आप अरब इसराइल स्पेन की अगर बात करें, जंग की उस वक्त के हालात की, तो मिस्र ने दोबारा लीडिंग रोल प्ले किया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अभी किस जगह पे जा रहे हैं, लाशें गिर रही हैं और लोग मर रहे हैं। इवन जो जामतुल अजहर है, वहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स से लेके उनके स्टूडेंट्स निचले लेवल तक, हर शख्स जो है वो ये बात समझने से आ रही है कि मौजूदा जो डिक्टेटरशिप है वो उस मुसवदे के जरिए लाना क्या चाहती है, कौन सी रिफॉर्म्स चाहती है और इजिप्ट को कौन सा सिस्टम देना चाहती है। मेरे ख्याल में इजिप्ट की करंट जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो बड़ी वाइटल है और उसका असर जो है वो पूरे मशरक वुस्ता के अंदर और इवन जो प्रो अफ्रीकन जो ग्रुप है उसके ऊपर बड़े उसके नेगेटिव कह लें, पॉजिटिव असर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल नेगेटिविटी जो मूव हो रही है, जो जा रही है, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में ये कानूनी और आईनी मुसद्दा अवामी राय आमा के तौर पे अपनी जो हैसियत है वो खोता जा रहा है, और उसकी मुसद्दे की इम्प्लीमेंटेशन से पहले और जो पहले इससे पहले मुसद्दे पेश होते रहे, अमेंडमेंट्स होती रही। हुस्नी मुबारक का तो दौर आपने देख लिया, उसमें रिफॉर्म्स की बात तो होती थी, लेकिन वही वही चीजें होती थी। फॉरन पॉलिसी वही थी जो इसराइल डिक्टेट करता था, जो अमेरिका डिक्टेट करता था। मेरे ख्याल में नई कोई चीज नहीं है, इसलिए लोगों का सड़कों पर आना और एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेना ये बड़ा नेचुरल है और ये फेनोमेना होगा इजिप्ट के लिए। अगर लोग स्ट्रीट पावर में खड़े रहे और उन्होंने जो है वो जो ट्रू लॉ है, स्पिरिट है लॉ की, उसकी बात की, तो मेरे ख्याल में इजिप्ट के लिए बेहतर होगा। या फॉरेन डिक्टेशन है इसके अंदर। मेरे राय के मुताबिक मैं रात एक दोस्त से जो खलीज टाइम में होते हैं उनसे मेरी इसी सब्जेक्ट पे बात हो रही थी, वो बहुत अच्छे राइटर हैं मोहम्मद नसर, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस मुसब्बे का मेन टाइटल और मेन थीम यही है कि इसराइल अपनी सुपरमेसी चाहता है इस खत्ते के अंदर, और ये खत्ते के अंदर सुपरमेसी किसके जरिए हो रही है, वो लॉ मेकर्स के जरिए हो रही है, वो इंटेलिजेंसिया के लोग जिनका रिलेशनशिप इसराइल के साथ है वो वहां पे बैठे हैं और वो इस चीज को प्रोलोंग कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। रजवी साहब, जनाब आप क्या कहते हैं, ये जो मुसविदा, नया मुसविदा जो तैयार किया गया है, ये अम्र मूसा साहब उस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उनकी सदारत में जो 50 रुकनी कमेटी थी उसने आइन का नया मुसविदा तैयार किया है। अम्र मूसा साहब डिक्टेटर जो हुस्नी मुबारक था उसकी हुकूमत में एक अरसे तक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। इनकलाब मिस्र में उनका क्या किरदार था कि ये जो मौजूदा सेटअप है जो असीसी साहब जिसके वज़ीर दिफा हैं और वो जो हुकूमत लाए हैं अदली मंसूर, तो अदली मंसूर का भी और असीसी का भी दावा ये है कि ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है, मौजूदा जो बुरी हुकूमत है, ये इनकलाब की पासदारी के लिए लाई गई है। तो अगर इनकलाब की पासदारी मकसूद थी तो फिर आइन की जो पे नज़र सानी की जो कमेटी थी उसका चेयरमैन किसी ऐसे शख्स को क्यों नहीं बनाया गया जिसका इनकलाब मिस्र में बुनियादी किरदार रहा हो, जो आमरियत का शुरू से मुखालिफ रहा हो।
सही, देखिए अम्र मूसा वो एक शख्स हैं, जैसे आपने अपने सवाल में पूरा यानी कि वाजे कर दिया कि उनका बैकग्राउंड क्या है, जो मैं बताना चाह रहा था कि अम्र मूसा एक वो शख्स है जो इस्टेब्लिशमेंट का फिगर है, जो मुबारक के साथ हमेशा काम किया है डिक्टेटरशिप, और अम्र मूसा ही वो शख्स है जिसके बिना पर इसराइल के और इजिप्ट के ताल्लुकात जो है यानी कि हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और अम्र मूसा बिल्कुल ही यानी कि जब इनकलाब मिस्र शुरू हुआ था उस वक्त भी अम्र मूसा का किरदार जो है कोई ऐसा नहीं था। दूसरे भी फ़र्द हैं जिन्होंने सड़कों पर आकर और तहरीर स्क्वायर में तकारीर दी, जैसे इब्राहिम अल बरादी साहब हैं। इब्राहिम अल बरादी साहब को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे थे मिलिट्री गवर्नमेंट, मगर उन्होंने इनकार कर दिया उससे। तो अम्र मूसा जो है ना यानी कि उनकी शख्सियत बिल्कुल ही ऐसा कहा जाए कि हिस्टोरिकली अगर सोचा जाए तो इसी तरह का एक और मूसा शख्सियत था जो सिफीन के जग में था, मूसा अल आशरी। तो अम्र मूसा जो है बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट ब्रोकर हैं, वो जो है अवाम को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मिलिट्री ही की यानी कि पासदारी करेंगे। इनकलाब मिस्र की पासदार कभी वो नहीं बन सकते, क्योंकि उनका मेन एम ये है कि अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, और उसके साथ साथ जो है इस वक्त अगर आप देखें इसकी सिचुएशन जो डेवलप हो रही है मिडल ईस्ट में, कि इसराइल और सऊदी अरेबिया जो है ईरान के जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है अमेरिका और 5+1 के साथ, ये दोनों मुल्क जो है साइडलाइन हो रहे हैं, इनकी हैसियत और इनका इन्फ्लुएंस जो है कम हो रहा है। तो मिस्र ये चाहता है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया को जो है एक पोजीशन दी जाए, और अम्र मूसा जो है ये काम उन्हीं के यानी कि इसराइल और सऊदी की पासदारी के लिए कर रहे हैं, अमेरिका की पासदारी के लिए कर रहे हैं। इनकलाब मिस्र से उनका कोई यानी कि ना मोहब्बत है, ना वो पब्लिक को कुछ फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब तक यानी कि अम्र मूसा चेयरमैन रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, मेरे ख्याल में अवाम का फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि किरदार अम्र मूसा का जो है मुनासिब नहीं है मिस्र के पब्लिक के फ़ायदे के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारा राबिता हिंदुस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मरकजी रहनुमा डॉक्टर कासिम रसूल इलियास से टेलीफोन लाइन के जरिए बरकरार हुआ है। जनाब कासिम रसूल इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्ला।
जनाब मिस्र के हालात पर आज गुफ्तगू हो रही है, ख़ास तौर पर मिस्र में जो आइन का नया मुसवदा पेश किया गया है, जो 50 रुकनी कमेटी अमर मूसा साहब की सदारत में कायम की गई थी, उसने ये पेश किया है। इस मुसवदे के पेश किए जाने के बाद से मिस्र में एक बार फिर आवाम सड़कों पर आ गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मोहम्मद मुर्सी के हामियों में और उनके मुखालिफीन में तसादुम भी हुआ है, कुछ लोग मारे भी गए हैं। ये जो मुसवदा है जो पेश किया गया है, इस पर अवामी हलकों का और इख्वानुल मुस्लिमीन का सबसे बड़ा एतराज़ किस बात पर है, किस शिक पर है?
नहीं देखिए, असल में मेरा ख्याल ये कि मसला इस बात का नहीं है कि मौजूदा मसौदे में किस शख्स पर एतराज है। बुनियादी सवाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है जनरल सीसी की, इसकी लेजिटिमेसी क्या है। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को बगावत के जरिए से उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है और एक तरह से डिफैक्टो मुबारक के ही जो असासियात थे, मुबारक के ही जो बाकियात थे, वही इनडायरेक्टली डिफैक्टो रूल कर रहे हैं। जुडिशरी वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, मिलिट्री वही है। तो अब उसके जरिए से जो मसौदा लाया जा रहा है कानून का, जाहिर बात है कि ये तो एक ऐसी हुकूमत को जो अमेरिका और इसराइल के पुष्पनाई से इस वक्त कायम हुई है, उसको लेजिटिमेसी फ्राहम करने की कोशिश हो रही है, एक ऐसी हुकूमत को थोपने की कोशिश हो रही है जो मुबारक का एक तरह से रिप्लेसमेंट होगा, कोई और फर्क नहीं होगा। आप देखिए कि ये 2011 में जो अरब स्प्रिंग के जरिए से मिस्र के अवाम ने डिक्टेटरशिप को वीटो किया था और ये चाहा था कि मिस्र के अंदर जमहूरियत बहाल हो, और उनकी कोशिशों से जमहूरियत बहाल हुई थी। एक साल भी उस जमहूरियत को काम करने का मौका नहीं दिया गया और उसको आउट कर दिया गया। उसके बाद से जाहिर बात है कि वही लोग दोबारा बरसे इकदार आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो शख्स डेमोक्रेटिक इलेक्ट हुआ था वो आज जेल में है, और जिसके खिलाफ पूरी तहरीक चली थी वो आज बाहर बैठा हुआ है और ऑलमोस्ट फ्री है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 2011 में अरब स्प्रिंग के जरिए से अवाम के जज्बात के बुनियाद पर जो इनकलाब बरपा हुआ था, उस इनकलाब को तकरीबन लपेट दिया गया है। और अब जो हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी हुकूमत को इजिप्ट में लाने, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इजिप्ट की, वो आप और हम सब से वाकिफ हैं। जाहिर बात है कि वहाँ किसी ऐसी हुकूमत को अमेरिका और इसराइल बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसके मफादात के खिलाफ जाती हो, जो फलस्तीनियों के उसके हकूक दिलाती हो, जो इस्लाम के बुनियादों पर स्टेट को इस्तवार करना चाहती हो, एक ऐसी हुकूमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे अवाम की कितनी ही बड़ी ताइद उसको हासिल हो। तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसने 5 इलेक्शन फेस किए, एक इलेक्शन नहीं 5 इलेक्शन फेस किए थे, और 5ों इलेक्शन में अवाम की उसको ताइद हासिल थी, उसको हटाकर अब जो है एक तरह से एक ऐसी हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है जो दरअसल मुबारक के, यानी एक डेमोक्रेसी के नाम से मुबारक के ही दौर को रेस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अमरीका और इसराइल के फतात वहां बाकी रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मसौदा अमर मुसा बनाए या मसौदा अदली मरसूल बनाए या मसौदा कोई और बनाए। अगर वो, और आप खुद देख रहे हैं कि इस मसौदे में जो मसौदा सामने आया है, मिलिट्री को गैर मामूली अख्तियार दे दिए गए हैं जो कि उनके जमाने में भी थे। तो अब मसला ये है कि मिलिट्री ही तय करेगी कि मुल्क का वजीर खारजा कौन होगा, मिलिट्री के जो पावर होंगे वो इलेक्टोरल गवर्नमेंट के अंदर भी उसका दखल होगा, उसके बगैर खारजा पॉलिसी तय नहीं होगी, उसके बगैर जो है मुल्क के अंदर का इंजाम तय नहीं होगा, इसराइल से मामलात का मामला आएगा तो मिलिट्री ही की बात सामने रखी जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बात बुनियादी तौर पे मसौदे की नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक कि आप अवाम का ये जो मुतालबा है, और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी हम देख रहे हैं कि जब से 3 जुलाई के वाके के बाद से अवाम सड़कों पर मौजूद है, उनका मुतालबा मुस्तकिल यही है कि मुर्सी साहब को रेस्टोर किया जाए, उस हुकूमत को बहाल किया जाए। तो हमारा ख्याल ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो इलेजिटमेट हुकूमत है, और इसने उसके बाद से जिस बड़े पैमाने पे बेदर्दी साथ में कत्लेआम किया है वो भी दुनिया के सामने है। तो हम समझते हैं कि, और फिर अब भी जिस तरह से ट्रायल हो रहे हैं, मुर्सी का जो ट्रायल हो रहा है, जिस तरह खवातीन को जेल में भेजा गया है, इससे पिक्चर साफ है कि फिर एक ऐसी डिक्टेटरशिप जो मेरा ख्याल है एक मुबारक के दौर से ज्यादा सख्त होगी, इसलिए कि इसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट उससे ज्यादा हो रहा है। तो एक ऐसी डिक्टेटरशिप को दोबारा वहां कायम करने की कोशिश की जा रही है। अफसोस की बात यह है कि अमेरिका इसराइल के साथ साथ बाज अरब हुक्मरान भी इसकी तायद कर रहे हैं।
जी डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा सेटअप है, इसका दावा यह है कि मुर्सी साहब इनकलाब को उसके असली ट्रैक से हटा रहे थे और यह सेटअप
देखिए पहली बात
इनकलाब
तो
की पासदारी के लिए वजूद में आया है।
देखिए सवाल ये पैदा होता है इसका फैसला कौन करेगा?
जी
जिन लोगों ने मुर्सी साहब को इलेक्ट किया था वही इस बात के मजाज थे कि वो उसका फैसला करेंगे। मुर्सी साहब इनकलाब के रास्ते से हटा रहे थे या नहीं थे, और ये बात बिल्कुल अब साफ हो गई है कि जो तमरुत की तहरीक थी वो सऊदी अरब के, अमरीका के और इसराइल के पुष्पनाई से चल रही थी, वही की उसकी सरमाया लग रहा था। और अभी रिसेंटली जो सर्वे आया है जो इजिप्ट के ही एक मुमताज एजेंसी ने किया है उसमें बताया कि 60% लोग आज भी मुर्सी को बहाल करने के हक में हैं। और ये बात भी सामने आई कि तमरुद की तहरीक को जो इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया था वो सिर्फ चंद ऐसे लोगों की थी, और फिर उस दरमियान में जितनी बदतमीजियां हुई, जितने वाकयात हुए वो सब सामने आ गए, वो पूरा एक्सपोज हो गया तमरुद की तहरीक। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आउट करने का या उसको हटाने का इख्तियार भी, उसको हटाने का तरीका भी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही होता है। डिक्टेटरशिप के जरिए से, फौज के जरिए से अगर हटाया जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते, अगर ये कहा जाए फिर एक साल का आपने वक्त दिया मुर्सी साहब को, और आप सोच सकते हैं कि 30 साल के मुबारक दौर के जो खराबियां थी उसको ठीक करना, ताल्लुकात को रेस्टोर करना, बिगड़ती हुई मईशत को बहाल करना, और फिर ये कि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री वही मौजूद है और बार बार रखने डाल रही है, बार बार रुकावटें डाल रही है, काम करने नहीं दे रही है, सब चीजें सामने आ चुकी है। इस हालात में मुर्सी साहब ने एक साल में जो अचीवमेंट किए थे वो गैर मामूली थे। उन्होंने चीन का पहला दौरा किया, ताल्लुकात बहाल किए, ईरान से ताल्लुकात बहाल किए, अरब मुल्कों से ताल्लुकात बहाल किए, IMF के लोन को रेस्टोर किया, अंदर के जो कारपोरेट थे उनको लगाम दी। तो ये अच्छा, फिर ये कि गजा का रास्ता खोला, फलस्तीनियों को राहत पहुंचाई, इसराइल को काबू में करने की कोशिश की, माहिदा करवाया फलस्तीनियों के साथ में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस रास्ते पे वो जा रहे थे वो रास्ता जाहिर बात है कि अमेरिका के लिए और इसराइल के पसंदीदा रास्ता नहीं था, वो रास्ता मिलिट्री के लिए पसंदीदा रास्ता नहीं था, वो रास्ता एक हकीकी डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने का रास्ता था जिसके लिए ये लोग तैयार नहीं थे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा। अब्बासी साहब, जनाब ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें तो दो राय नहीं है कि ये एक साजिश के तहत आया है, और असीसी साहब ने एक फौजी बगावत करके जो वहाँ के इलेक्टेड और मुंतखब सदर थे उनको इख्तदार से हटाया और अपनी पसंद की एक अबूरी हुकूमत उन्होंने कायम की। अमेरिका की जानिब से अगर इसकी हिमायत की गई तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अमेरिका ने दुनिया में हर जगह आमिर हुकूमतों की हिमायत की है और आवाम की मुंतखब हुकूमतें उसे सूट नहीं करती हैं। मेरा सवाल यह है कि मुर्सी साहब ने जब हुकूमत बनाई थी तो खित्ते की जो हुकूमतें उनकी हिमायत में आगे आई थी उनमें खुद सऊदी हुकूमत और कतर की हुकूमत भी शामिल थी और काफ़ी करीबी रवाबित थे मुर्सी साहब के सऊदी हुकूमत से भी और कतर से भी। आज वही सऊदी हुकूमत और कतर की हुकूमत खित्ते की उन हुकूमतों में हैं जो मुर्सी की मुखालफत में, और जो मौजूदा सेटअप है जो मुर्सी के ख़िलाफ़ फौजी बगावत के ज़रिए इख्तदार में लाया गया है उसकी हिमायत में, यानी दामे दिरमे हर तरह से उसकी हिमायत के लिए वो तैयार हैं। ये इस दरमियान हुआ क्या कि एक साल के अंदर ये दोनों हुकूमतें जो अख़बारुल मुस्लिमीन की क़यादत में आने वाली हुकूमत की हामी थी वो उसका तख्ता उलट के आने वाली हुकूमत की हामी बन गई?
देखिए बात बड़ी वाजे है, मुर्सी मुबारक साहब जो डिक्टेटर थे वो आलाए कार थे, पब्लिक थे इसराइल के, और इसी तरह जो उसके बाद टॉपल की गई गवर्नमेंट मुर्सी साहब की, उस ड्यूरेशन में अगर देखें तो हमेशा सऊदी अरब ने इसराइल के कहने पे पब्लिक का किरदार अदा किया है, और जो पैसा जो मुसलमान ममालिक की दौलत है बैरून ममालिक में वो असासे मुंजमद हो जाते हैं और बाद में वो लोग उस पर जो है वो अयाशियां करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब ने पहले भी इसराइल के कहने पे जो है वो उसकी फेवर की थी, और अब भी इसराइल और अमेरिका के इशारे पे उसकी मुखालफत कर रहा है। अब रीजन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल से समझाता हूँ। सऊदी अरबिया को नेचुरली डिक्टेटरशिप यानी बादशाहत सूट करती है।
अब्बासी साहब से
उनका रिवाज उन्होंने किए हुए, और बहुत सारे सऊदी अरबिया के अंदर मामला ऐसे हैं बुनियादी इंसानी हकूक की सूरत हाल अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सही तरीके से वहां पे पहुंचे और देखे तो दुनिया के अक्सर ममालिक में से एक मुल्क सऊदी अरेबिया है, तो उन्हें सूट वही करती है। एक चीज वो है कि मिस्र की मिलिट्री में तारीखी लिहाज से अगर आप देखें तो इसराइल के प्रो और सऊदी अरब के प्रो लोग वहां पे बैठे हैं जो सीआईए और मोसाद के पैनल पे हैं, और उनके मिलिट्री हमेशा जो है उनका सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट वही है जो इसराइल चाहेगा, लिहाजा वो कभी भी ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे। अमेरिका ने जब टॉपल किया उसकी मुबारक को तो लोगों का हुजूम देख के मैसेज को देख के पूरी दुनिया ने वावेला मचाया, ठीक है जी ट्रांजेक्शन जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि दुनिया के सामने हम कहें कि जमहूरियत जो है वो बहाल हो गई और ट्रांजेक्शन हो गई। जब उन्होंने थोड़ा सा मौका दिया सऊदी अरब को भी कहा कि ठीक है आप फेवर करें, जब वो ट्रांजेक्शन हो गई और उसके समाराग पहुंचने थे फिर बुरी हुकूमत फिर वही पापेट्स फिर वही सीआईए और मोसाद के लोग मुसादा उनके हाथ में दे दिया जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेंगे। जब फॉरेन पॉलिसी आप मुझे बताएं उस मुसादे के अंदर डिस्कस होगी तो कौन सी फॉरेन पॉलिसी होगी, क्या ऐसी फॉरेन पॉलिसी होगी जो खिते के अंदर फ्रेंडली हो, जो ईरान के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखे, जो दोस्त इस्लामी ममालिक के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखे, नहीं वो फॉरेन पॉलिसी होगी जो इसराइल चाहेगा, जो इसराइल का थिंक टैंक चाहेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, ये सारे का सारा खेल जो है ये इसका स्क्रिप्ट लिखा गया है तलबीब के अंदर, तो तलबीब जो चाहेगा वो अपनी उंगलियों के इशारों पे मुसवदा बनाने वालों को नचा रहा है, जो मुसलमानों को इजिप्ट के शहरियों को नहते नौजवानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और इसके जरिए इसराइल के जरिए इसराइल अपनी थानेदारी चमकाने के लिए आपको बताए इजिप्ट अगर फ्रेंडली हो जाता है पैलेस्टाइन के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ, तो उनकी बाउंड्रीज भी आपस में मिलती है, तो मिडिल ईस्ट में तो अमन आ जाएगा, मिडिल ईस्ट में तो उन्हें लीडरशिप मिल जाएगी इस्लामी मुल्क की सूरत में, तो क्या इसराइल चाहेगा क्या अमेरिका चाहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बात बिल्कुल सिंपल है। इसीलिए उन्होंने अपने लोग मिस्र की मिलिट्री के अंदर बिठाए हैं जो जब चाहे उनके इशारों पर अपनी मर्जी का खेल खेले, और ये खेल और ये मुसादा ये सारे का सारा डिक्टेटर रूल मुर्सी का ट्रायल ये सारे का सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा है और स्क्रिप्ट अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं इसको खौफनाक सूरत हाल की तरफ देख रहा हूँ कि जितना ये कहते हैं ना कि उतना ही उभरेगा जितना के दबाएंगे, जितना दबाया जाएगा उतना ही मिस्री आवाम उभरेंगे और ये खिते के लिए मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी रिजवी साहब। जनाब आपके ख्याल में आइन का ये जो नया मुसविदा तैयार किया गया है इसमें बैरूनी अवामिल कितने दखील रहे हैं?
देखिए जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन और बैरूनी ममालिक का इंटरफेरेंस है तो कुछ हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव अगर इसको देखा जाए तो देखें ईरान में 1953 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी जिसके रहबर जो थे मुसद्दक साहब थे, उनको जो है सीआईए ने वहां से निकाला, दोबारा फिर वहां पर मोनार्की और डिक्टेटरशिप आई। इसी तरह 1973 में 40 साल पहले आईएनडी साउथ अमेरिका में डॉक्टर आईएनडी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वहां पर जो है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उन्होंने हटाया सीआईए ने और अमेरिका ने अगेन, और वहां पर जो है मिलिट्री हुकूमत को डिक्टेटर बनाकर डिक्टेटर पिनोशे को 25 साल वहां पर हुकूमत करवाई। इसी तरह जाइया में जो है लुमुम्बो वहां पर प्रेसिडेंट थे 1963 में मेरे ख्याल में, वहां पर उनका कत्लेआम किया गया, वहां पर जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव किया गया, और फिर वो है मुबूटू को वहां पर बिठाया गया जिसने जो है तकरीबन 25-30 साल तक जो है मुल्क को जो है तबाह किया, वहां पर कत्लेआम किया। तो ये अगर तजिया किया जाए, एक तरफ मैंने आपको अफ्रीका का बताया, एक तरफ जो है साउथ अमेरिका का, और फिर ईरान का, तीन अलग कॉन्टिनेंट्स में, तीन अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में अमेरिका ने जो किरदार अदा किया है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये बिल्कुल यानी कि वाज़े है, ये जो है एक कोई एक पर्टिकुलर प्रस्पेक्टिव, एक वो जो है अपनी तरफ से मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हर एक तजिया कर सकता है, हर एक देख सकता है। थोड़ा सा अगर गूगल पे जाकर रिसर्च करें तो पता चलता है कि अमेरिका ने किस तरह से इंटरफेयर किया इन ममालिक में, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमतों को हटाकर वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट को बिठाया गया, और फिर मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो है अमरीका का काम किया, अमरीका की कोऑपरेशन को फायदा पहुंचा, अमेरिकन बिजनेसेस को फायदा पहुंचा, वहां की अवाम को नुकसान पे नुकसान पहुंचता गया और कत्लेआम होता गया। तो इसी तरह इजिप्ट में ये चाहे नया आईन आए है बनाया जाए, नए कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से भी वो पेश करें, ये चीज बिल्कुल वाजे है कि हुकूमत जो इस वक्त पावर में है इजिप्ट में वो अवाम के साथ नहीं है और बेरूनी ममालिक के फायदे में वो काम कर रही है। जैसे आपके प्रीवियस दोस्तों ने पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से फरमाया कि ये हुकूमत सिर्फ फायदा चाहती है इसराइल का और अमेरिका का और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का। और प्लस एक अहम चीज यह है कि मुर्सी साहब ने जो डेमोक्रेटिक मॉडल पेश करने की कोशिश की और एक साल तक यानी कि रही वो हुकूमत, तो अमेरिका नहीं चाहता है कि दूसरे मुस्लिम ममालिक और दूसरे यानी कि थर्ड वर्ल्ड के ममालिक ये ना देखें कि डेमोक्रेसी का मॉडल जो है उनके यहाँ भी कामयाब हो सकता है और चल सकता है। तो ये एक यानी कि शदीद जंग चल रही है जहाँ पर अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई और मॉडल सक्सेसफुल हो। अगर कोई मॉडल सक्सेसफुल होता है तो फिर पब्लिक ये कहेगी कि अमेरिका की यानी कि प्रेशर से वो काबू नहीं पा सकेंगे और अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी और अल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव मॉडल पेश किया जाए दुनिया के सामने।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब।
जी फरमाइए
जनाब। ये जो आइन का जो नया मसौदा पेश किया गया है इसकी जो बातें सामने आई हैं, जिस तरह से फ़ौज के अख्तियारात बढ़ाए गए हैं, फ़ौज को ये अख्तियार दे दिया गया है कि गैर फौजी शख्सियात को फौजी अदालत में घसीटा जाए और उन पर मुकदमा चला सकती है, इसी तरह से आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा को हटाने का अख्तियार सदर से लेकर फौजी काउंसिल को दे दिया गया है, तो इन तमाम चीज़ों से ये बात तो बिल्कुल वाज़ हो गई है कि इसका असल मकसद जो है ये फौज को बालादस्ती देना है और फिर यह कि इसके नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी वो फौज की एक पिट्ठू हुकूमत होगी। ये सब बातें तो अपनी जगह पर हैं। मेरा सवाल ये है कि मिस्र के जो ज़मीनी हकायक हैं, जो मौजूदा हालात हैं, अवाम में जो बेदारी आ चुकी है इस्लामी बेदारी की लहर के नतीजे में, क्या मिस्र के अवाम से मौजूदा सेटअप इस आईन के मुसवदे की मंजूरी ले सके?
देखिए पहली बात तो यह है कि जो जो अवाम आज 2 साल पहले 30 साल मुबारक के दौर को उठा के फेंक सकती है, जाहिर बात है कि वो अवाम जो है मौजूदा हुकूमत को भी बहुत दिन तक के चलने नहीं देगी, चाहे उसके पीछे अमेरिका की ताकत हो, इसराइल की ताकत हो या मिलिट्री पूरी तरह कुव्वत हो। इसलिए मुबारक को भी मिलिट्री की पूरी हिमायत हासिल थी, अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल थी, इसराइल की पूरी हिमायत हासिल, लेकिन अवामी सैलाब के सामने इस तरह की चीज़ें जो है खसो खाशक की तरह बह जाती हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये ड्रामा जरूर रचा जाएगा, रेफरेंडम के लिए पेश किया जाएगा, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि रेफरेंडम के अंदर ये मसौदा कामयाब हो गया है, लेकिन ये सब ये जाली किस्म के वोट डाले जाएंगे और इसको दिखाने की कोशिश की जाएगी और मीडिया भी जो मौजूदा हुकूमत के जेर तहत है वो इसको बड़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जमीनी हकीकत है कि अवाम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इसको रेफरेंडम में पेश होने से पहले ही जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं ये साबित करते हैं कि अवाम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं और अवाम तो मौजूदा हुकूमत को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो डंडे के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर हुकूमत चल रही है। एक दिन भी अगर ये हुकूमत डेमोक्रेटिकली लोगों को आगे मौका दे, जो तहरीर इस कार में जो कुछ देखने को मिली थी उससे ज्यादा कुव्वत के साथ में लोग सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह जिस बेदरी के साथ में इनको कुचला जा रहा है, जिस तरह से खवातीन को जेलों के अंदर ठोसा जा रहा है, जिस तरह प्रोटेस्ट के ऊपर में जो है गोलियां चलाई जा रही है, जिस तरह मुजाहरीन को कत्ल किया जा रहा है, तो उससे तो बिल्कुल साफ वाजे है कि हुकूमत जो है जबर के बुनियाद पर, ताकत के बुनियाद पर अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश कर रही है। तो ताकत के बुनियाद पर अगर कोई चीज़ मनवा भी ली जाए वक्ती तौर पर तो उसके अंदर वो ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, बिलाखिर उसको जाना है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मसौदा का अगर हमको ये दिखाने की कोशिश की गई कि मसौदा अवाम ने मान लिया है तो वो जाहिर बात है कि एक आर्टिफिशियल तरीके से वो चीज़ करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है कि अवाम उसको रेफरेंडम में पेश होने से पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं और हमें उम्मीद ये है कि देर या बदेर बहरहाल मिस्र के अंदर दोबारा अवामी हुकूमत कायम होगी और जो इस्लामी बेदारी आई थी वो उस बेदारी की बुनियाद पर दोबारा इस्लामी इंकलाब आएगा और वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा।
जी कासिम रसूल इलियास साहब, वक्त हमारे पास कम रह गया है कि इस वक्त मिस्र के मुंतखब صدر مرسی صاحب جیل میں ہیں، مقدمہ چل رہا ہے، اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو لمبی لمبی جیل کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، سیاسی میدان سے اخوان کو باہر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، آئین کا نیا مسودہ پیش کیا گیا، فوج کی طاقت بڑھائی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کن بنیادوں پر یہ امید ہے کہ انقلاب سبوتاج ہونے سے بچ جائے گا؟ ایک منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس۔
نہیں، میں دیکھیے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ عوام جنہوں نے مبارک کے دور کو ختم کیا اپنی طاقت سے عوامی لہر کی بنیاد پہ، وہی عوام اب مصر کے اندر موجود ہے۔ دو سال کے اندر عوام تبدیل تو نہیں ہو گئی ہے، وہ عوام جو ہے اپنی کوششوں کو اس طرح رائے گا ہوتے نہیں دیکھی کہ وہ عوام کھڑی ہوگی، اور آج بھی کھڑی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے ان کو کچلا جا رہا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزاروں تعداد میں، لیکن عوام کا احتجاج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ عوام کو بہت دن تک کے کچلا نہیں جائے گا، بالآخر عوام کی آواز بلند ہوگی اور عوام کی آواز تسلیم کی جائے گی۔ ہمیں پوری امید ہے، حالات سے امید ہے، جس طرح سے ہمارے بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں، جس طرح سے خواتین سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے نوجوان نسل سامنے آ رہی ہے، اس سے یہ امید ہے کہ اس سیلاب کو دیکھیے، یہی چیز، یہی بالکل یہی صورتحال ایران میں تھی، یہی عوامی انقلاب تھا جس نے رضا شاہ پہلوی کو، ساواک کو اور سی آئی او کو، امریکہ کو ناکام کیا تھا۔
بہت بہت شکریہ،
کہ عوامی انقلاب کے سامنے کوئی اور چیز نہیں تھی۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس میں دو رائے نہیں کہ جب تک عوام میدان میں ہیں اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت مصر کے عوام کے انقلاب کو نہ ہائی جیک کر سکے گی، نہ سبوتاج کر سکے گی، نہ اسے ٹریک سے ہٹانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔